अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः इस संडे के प्रीति भोज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। श्री श्री राधा गिरिधारी जी और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी सुदर्शन चक्र शालिग्राम शिला तुलसी महारानी इन सब की ओर से आपका सबका स्वागत है। सबको सुनाई पड़ रहा है कि आवाज कम है? भगवान की असीम कृपा से अभी मीरा रोड के अंदर नए मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सब जानते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। वैसे मंदिर तो बहुत सालों से है, इसके पहले भाईंदर में था, वहाँ पर राधा गिरिधारी जी बहुत साल रुके। इसके बाद में यहाँ पर मंदिर टेम्पररी निर्माण किया गया, बड़ा और परमानेंट मंदिर का निर्माण हुआ है। ये मीरा रोड के लिए, सब भक्तों के लिए, हम सब के लिए बड़े भाग्य की बात है। भगवान का मंदिर का निर्माण यहाँ पर होगा। आप यहाँ पर पढ़ते हैं ना, देखो यहाँ पढ़िए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, धर्मोत्तर पुराण और वामन पुराण, इसके अंदर से बहुत सारे संदर्भ दिए हैं यहाँ कि भगवान के मंदिर का बांधकाम जो है उसकी सहायता करने से क्या क्या लाभ होता है। इसका सार ये है कि जो भी व्यक्ति भगवान के मंदिर में निर्माण करने में सहायता करता है वो भगवान के धाम का निवासी होता है, बन जाता है, उसके योग्य बन जाता है, ये इसका सार। अलग अलग प्रकार से उसी बात को बताया गया है, लेकिन सार का मतलब यह है कि भगवान विष्णु का मंदिर निर्माण करने में जो सहायता करता है उसकी गति भगवान के धाम में होती है। वैसे तीन प्रकार के स्थान माने गए हैं, तो स्थान कोई भी अगर देखेंगे तो तीन प्रकार के होते हैं, वास्तविक चार प्रकार के होते हैं लेकिन भौतिक दुनिया में तीन प्रकार के होते हैं। एक स्थान है सत्वगुणी स्थान, जहाँ पर सत्वगुण विराजमान रहते हैं, जैसे कि आप नदी किनारे गए, बगीचे में गए, जंगल में गए, तो वो सत्वगुणी स्थान है, वहाँ सत्वगुण का प्रादुर्भाव होता है। अगर आप शहर में आए, शेयर बाजार में गए, मार्केट में गए, वहाँ बिजनेस के सेंटर में गए, इंडस्ट्रियल एरिया में गए, तो वो रजोगुण की एरिया, वहाँ पर धन कमाना, दुनियादारी काम करना, पोजीशन, प्रेम, यश, कीर्ति, शरीर का भोग, इसके लिए लोग काम करते रहते दिन रात। और जहाँ पर व्यभिचार होता है, जुआ खेला जाता है, मांसाहार होता है, प्राणियों की हत्या होती है, गुनहगारी होती है, वो स्थान तमोगुणी माना, वहाँ तमोगुण का प्रादुर्भाव रहता है, वहाँ जाने से हम पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सत्व, रज और तमोगुण, लेकिन इसके परे दिव्य गुण है विशुद्ध सत्व, और उसमें भगवान का निवास होता है। और जहाँ पर भगवान के नाम का कीर्तन होता है वो जगह तीनों गुणों के परे हो जाती है और विशुद्ध सत्व गुण में, दिव्य गुण में स्थित हो जाती है। इसलिए जहां भी कीर्तन होता है वो कीर्तन का जो स्थान है वो गटर के बाजू में भी होगा और कहीं भी होगा, फिर भी कीर्तन के होते हुए तुरंत वो स्थान तीनों गुणों के परे हो जाता है। और वैसे ही भगवान का मंदिर जो है वो दिव्य गुण में रहता है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि भगवान का मंदिर जो है वो साक्षात वैकुंठ है, मतलब जहां से सत्वगुण निर्माण होता है विशुद्ध सत्वगुण वही स्थान है। तो ऐसे भगवान के मंदिर को सत्वगुण में है ऐसा बताना भी थोड़ा गलत है, क्योंकि सत्वगुण का उगम है, यहाँ पर सत्वगुण का भंडार है, वहां से बाहर सत्वगुण पहुंचता है, तो सत्वगुण के परे है विशुद्ध सत्वगुण। इसलिए जब भी हम मंदिर में आते हैं, मैं थोड़ा सा आपके काफी लोग बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा नए मंदिर के स्वागत के लिए हमारी मनोभावना कैसी होनी चाहिए, इस थोड़ा सा प्रयास करूंगा आपको बताने का कि नया मंदिर आने के पहले भक्तों के मन में, मेहमानों के मन में, ब्रह्मचारियों के मन में, सन्यासियों के मन में, गृहस्थों के मन में क्या भावना होनी चाहिए, नए मंदिर का निर्माण और नए मंदिर का पूरा लाभ कैसे लेना चाहिए, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे इस बात पर। तो इस मैंने जैसे बताया कि भगवान का मंदिर जो है वो भौतिक दुनिया में होते हुए भी स्वयं वैकुंठ था, और इसलिए जब हम अपने घर से आते, किसी के घर 2 मिनट के अंदर पे, किसी के घर बाजू की बिल्डिंग में, किसी के घर भाईंदर में है, भैसर में, बोरीवली में है, लेकिन जब आप अपने घर से निकलते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, वो जो यात्रा करते हैं एक तीर्थ यात्रा है, जैसे वृंदावन की यात्रा हुई तो हम लोग ट्रेन का टिकट निकालते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, मथुरा उतरते हैं, वहाँ से रिक्शा करते हैं, फिर वकील में जाते हैं, फिर वहाँ से दर्शन करने निकलते हैं। वैसे ही भगवान जहाँ पर विराजमान है उस स्थान का दर्शन करने के लिए निकलना ये तीर्थ यात्रा ही है, धाम यात्रा ही है। उसी भावना से हमको निकलना चाहिए, चाहे कुछ लोग रोज आते होंगे मंदिर में, चाहे कुछ लोग हफ्ते में एक बार आते हैं, चाहे कुछ लोग उत्सव में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को मंदिर की ओर निकलते हुए धाम की यात्रा करने का ही भाव होना चाहिए। और धाम में हम भी जाते हैं, धाम यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, भगवान के चरणों में आश्रय प्राप्त करने के लिए हम धाम जाते हैं, कोई पिकनिक बनाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, फॉर अ चेंज, थोड़ा सा बदल होने के लिए, थोड़ा विश्राम लेने के लिए हम धाम में जाते हैं। हम धाम में जाते हैं भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करने, हम धाम में जाते हैं भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करने के लिए, भगवान के चरणों के अपने जीवन को समर्पित करने के लिए हम धाम में जाते हैं। वही भाव हमें मंदिर में आते समय होना चाहिए कि अब मैं सुबह 5 बज रहे हैं, अब मैं मंदिर जाना निकल रहा हूँ, या 4 बज रहे हैं, 4:30 बजे मंगल आरती में जो आते हैं, या 6:30 बजे पुण्य आरती निकलते हैं और दर्शन आरती में आते हैं, तो आपका भाव ये होना चाहिए कि मैं अभी ठाकुर जी के सामने अपने आप को समर्पित करने के लिए और उनके चरणों में आश्रय प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तिलक लगा रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, हाँ जूता पहन रहे हैं, गाड़ी की चाबी ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, भाग्य होना चाहिए कि अब मैं मेरे ठाकुर जी के पास जा रहा हूँ, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए, अपना मंतव्य, अपनी भावना, अपना हृदय उनकी ओर अर्पण करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। क्योंकि साक्षात वैकुंठ है, जहाँ भगवान निवासते हैं, भगवान भी विराजमान है, उनकी सेवा होती है, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं वो निरंतर उनकी सेवा करते रहते हैं, तो ये वैकुंठ है। और भगवान का मंदिर जो है, जैसे कि हम जानते हैं ना कि अमेरिका देश है और अमेरिका देश की कई एम्बेसी है, मुंबई में है, दिल्ली में है, मद्रास में है ना, कलकत्ता में है, वहां पर जाने के बाद में आपको उस देश में जाने का वीजा मिलता है ना, और जब तक वो एम्बेसी आपको परमिशन नहीं देगी, आपको वीजा स्टैंप नहीं किया जाएगा, आपको उस देश में प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, टिकट भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको देश में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये मंदिर जो है ये गौलोक वृंदावन का एक एम्बेसी है, सेंटर है, जहां से यहां पर आने के बाद आपको वहां जाने का वीजा मिल सकता है, यहां आने के बाद, यहां सेवा करने के बाद, यहां पर रेगुलरली साधना करने के पश्चात आपको एक दिन शायद इसी जगह से वहां का एंट्री मिले, इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और ये कोई संगमरमर की प्रतिमा या पेपर की प्रतिमा या लकड़ी की प्रतिमा नहीं, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात यहां पर भगवान विराजमान, जिनकी भावना शुद्ध होती है उनको उनकी लीला दृष्टि गोचर होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथ भगवान ऐसे भाव रूप में थे, लेकिन उनको वो बांसुरी बजाते हुए दिखाई पड़ते थे रोज, जैसा भाव है हमारा, जितना शुद्ध भाव है वैसा दर्शन होता है, वैसा ही दर्शन प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अभी लगेगा कि ऐसे ही खड़े, हिलने रहे बोलने रहे तो उसने आंख बंद भी नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारी जड़ भावना है। जड़ भावना को वो जड़ ही दिखाई पड़ेगी, चेतन भावना को चेतन दिखाई पड़ेगी। तो हमें यहां पर आकर हमारी जड़ भावना को छोड़कर चैतन्य को प्राप्त करेंगे। जब चैतन्य को प्राप्त करेंगे तो वो भी हमको चैतन्यमय नजर आएंगे, रसमय नजर आएंगे, लीलामय नजर आएंगे, पूरा वृंदावन नजर आएगा। आप जानते होंगे ना चैतन्य महाप्रभु ने बालक रूप में जब ब्राह्मण को दर्शन दिया तो केवल उनको ब्राह्मण का दर्शन नहीं हुआ, उनके पीछे गाय मोर बंदर सारा वृंदावन धाम गंगा जी के साथ गोवर्धन के साथ दर्शन हुआ। तो भगवान जहाँ रहते हैं वो अकेले रहते नहीं, भगवान अपने धाम के साथ में रहते, अपने परिकर के साथ में रहते, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ में रहते, कभी भी वो ऐसे अकेले नहीं आते, उनका पूरा अंतराज पार्षद जो है साथ में रहते और पूरा वृंदावन धाम जो है उन साथ में रहता है। अगर दृष्टि है तो आपको जमुना नजर आएगी, गिरिराज गोवर्धन नजर आएंगे, गाय नजर आएंगे, मोर नजर आएंगे, हिलते जुलते भगवान नजर आएंगे, वासुदेव बजाते नजर आएंगे, नित्य करते नजर आएंगे। हाँ, ये सब यहाँ पर है, ये मत समझना कि हम लोग खाली ऐसे ही लोगों को बहका रहे हैं। अच्छा है दो से दो लोग बैठे हैं जो सबको बहका दो, ऐसा प्लानिंग नहीं है, ये सत्य है। तो सत्य को अंधो करने के लिए हम प्रयास करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पिक्चर देखते हैं हम लोग, पिक्चर में कुछ है नहीं, खाली पर्दा है, लेकिन पर्दे में इमोशन है, एक्शन है, थ्रिल है, सब कुछ है ना, साउंड है, और वो रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गुस्सा भी उनको आता है बीच में, क्या क्या होता है, कुछ भावना का ऊपर नीचे होता है, सब सत्य है, वो मानो सत्य है। अगर हीरो मर गए तो लोग रोते हैं, उधर रोते रोते बाहर रोमांच पूछते रोते बाहर आते थिएटर। तो वैसे ही है, अगर आपकी भावना है तो सब कुछ सत्य है, और श्रद्धा नहीं है तो सब टूटे, पत्थर है, लकड़ी है, बस कुछ है नहीं, टाइम पास कर रहे सब ऐसा है। और इसलिए भगवान की भक्ति का मार्ग जो है पूरी भावना पर आधारित, श्रद्धा के ऊपर जो भावना उस पर आधारित, और हमको वो सीखना है कि कैसे हमारी श्रद्धा बढ़ाएं और कैसे भावना बढ़ाएं। यहाँ पर आकर बार बार यहाँ का संग करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए अपने आप को शुद्ध बनाएं, तो इसी जगह पर आपको गोलोक का दर्शन होगा और गोलोक जाने का योग्य हो जाएंगे। जब इस जगह का अनुभव आपको गोलोक की तरह होगा तो समझ जाने का गोलोक जाने के योग्य होगा। जब इस जगह में गोलोक का आपको अनुभव आएगा तो वहां जाने के योग्य हो जाएंगे। इसलिए भगवान की जगह जगह ये मंदिर खोल कर रखे, इज आर कॉल्ड एज विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हाँ, एक झरोखा है, यहाँ से हमको गोलोक वृंदावन का दर्शन हो सकता है। इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूँ कि मंदिर में आने का जो कार्य है उसको मैकेनिकल मत बना, एक रिचुअल होता है ना, एक क्या बोलते हैं रीति रिवाज, जाना चाहिए। हमारे पिताजी जाया करते हैं, हम भी जाते हैं, टेम्पल करके आते हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ना चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं, ये बहुत गंभीर एक्टिविटी। मंदिर में आना, संडे के दिन आना या सुबह आना, हर रोज मंगल आरती में, दर्शन आरती में, या गुरु पूजा में, या भागवतम में, ये बहुत ही दिव्य गतिविधि है। इसको विकर्म अकर्म कहते हैं, ये बंधन से मुक्त करने वाला कर्म। इस कार्य से कार्य को करने से किसी प्रकार के बंधन में पुण्य कर पाप के जीव मुक्त हो जाता है। उससे कर्म होता है वो आपको अच्छे फल में बांध देता है, विकर्म जो है वो बुरे फलों में हमको मजबूर कर देता है। लेकिन अकर्म वो कर्म है जो करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है, केवल भगवान के धाम में गति हो। इस कार्य को अकर्म करो। तो मंदिर में आना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के विषय में सुनना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों का संग करना, तुलसी का दर्शन करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, ठाकुर जी को भेंट देना, ये सारी जो गतिविधियां हैं, जितना समय आप दे रहे हैं, जितना विचार कर रहे हैं उसके बारे में, जितना एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब आपको इस भावबंधन से मुक्त करने वाला है। इतनी शक्ति है उसके अंदर, लेकिन जैसी भावना से आएगा वैसा ही फल पाएगा। हाँ, 1,000 रुपया प्राप्त करने की जगह पर जाएंगे और 10 रुपया लेकर संतुष्ट होकर घर चले जाएंगे तो क्या कह सकते हैं हम, पूरा नॉलेज नहीं है, ऐसा बोलेगा ना आपको, अरे इस जगह में आने से 1,000 मिल सकता है, लेकिन 10 रुपया लेकर बड़े खुश होकर कुल्फी खाकर चले गए। लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं, 1,000 मिलना चाहिए, और पूरा 1,000 ले लें, पूरा 1,000 का आनंद लेंगे। तो वैसे केवल मत्था टेकने आएंगे तो वो लाभ होगा, और भगवत धाम को जाने के योग्य बनने के लिए आएंगे तो भगवत धाम पे जाने के योग्य बन जाएंगे। यहाँ की हर गति जो है आप प्रसाद पाएंगे, आप भक्तों से मिलेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, कीर्तन में भाग लेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, नृत्य करेंगे, कथा सुनेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे, भक्तों से प्रेम की बातें करेंगे, कुछ लोग निवास करेंगे यहाँ पर। हर चीज, हर गति जो है यहाँ की, हर विधि जो है वो हमको भगवान से मुक्त करने वाली है। तो मंदिर में क्या क्या जरूरी है? मंदिर में भगवान का विग्रह होना चाहिए, भगवान के रसोई घर होना चाहिए, भगवान का भोग बनेगा। मंदिर का और एक इम्पोर्टेंट घटना घटक ये है तो ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचारी वो सन्यासी आश्रम, विरक्त आश्रम कहते हैं। इसमें जो लोगों ने दुनियादारी का जो कार्य है उसको छोड़कर भगवान के लिए समर्पित किया है जीवन, ऐसे लोगों का आश्रम मंदिर में होना जरूरी है। अगर आप इंडिया के कई मंदिर में जाएंगे तो केवल चौखट होती है और मंदिर होता है, एक आध दो पगार वाले पुजारी होते हैं, उसको पगार मिलता है और कोई नहीं होता उधर। उस मंदिर में जाने से कोई हृदय में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि पेड़ आदमी भगवान की सेवा करता है, वहां पर कोई शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, वहां पर केवल पगार मिलता है कि धनी आदमी ने बना के रखा है, इसलिए लोग जाते हैं मत्था टेक के चले जाते हैं। लेकिन भगवान का मंदिर जो है वो हृदय परिवर्तन का केंद्र है। अभी होता है ना वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर, योगा ट्रेनिंग सेंटर, हेल्थ रिफॉर्मेशन, इतने सेंटर निकलते हैं। क्या चाहते हैं हम लोग? अपने हेल्थ में हो, अपने करियर में हो, अपने कोई कला में हो, परिवर्तन चाहिए, इसलिए जाते हैं वहां पर। तो ये आध्यात्मिक परिवर्तन सेंटर है। केवल कुछ मूर्ति बनाकर, मूर्ति भी ऐसा लगती है कि पेपर की बनी हुई है, कोई भावना नहीं उसके अंदर। लेकिन राधा कृष्ण को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो साक्षात जीवित भगवान, जागृत भगवान है। ये आपसे आदान प्रदान करेंगे, ये आपसे बोलेंगे, अभी बोलने जाएंगे। हाँ, क्यों भावना ऐसी होती है? क्योंकि यहाँ पर उनकी सेवा हो जाती है, यहाँ पर समर्पित भक्त रहते हैं जो घरदार छोड़कर यहाँ पर भगवान की सेवा में समर्पित है, उनके प्रति भावना है उनके मन में, एक व्यक्ति रूप में उनकी सेवा करते हैं। हाँ, वस्त्र पहनाते हैं, रोज बदलते हैं, फूल पहनाते हैं, फूल निकालते हैं, चंदन लगाते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर नया लगाते हैं, नए नए फूल अर्पण करते हैं, रोज नया चंदन लगाते हैं भगवान को, तुलसी धनी अर्पण करते हैं, नए रोज भोग लगाते हैं फ्रेश, कोई सुबह का शाम को लगाते नहीं है, हर टाइम फ्रेश खाना भगवान को लगाते हैं। एक व्यक्ति की तरह उनकी सेवा करते हैं, इसलिए व्यक्ति के रूप में आपको प्रकट होते हैं आपके लिए। आप उनको पत्थर की तरह प्रस्तुत करेंगे अपने आप को, तो आपके लिए पत्थर की तरह वो रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उनको एक व्यक्ति और परम व्यक्ति, परम भगवान के रूप में सेवा होती है उनकी, सेवा परम भगवान के रूप में आपको अनुभव देते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए, पुजारी होने चाहिए जो समर्पित है यहाँ पर, तो मंदिर के निवासी हैं। फिर शास्त्र होने चाहिए मंदिर का, और एक पर्पज है कि यहाँ पर शास्त्रार्थ विचार होता है, भगवान के विचार क्या है, भगवान ने क्या विचार व्यक्त किए हैं ग्रंथों के रूप में, साधुओं के माध्यम से हमको पहुंचाए हैं, भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या रहस्य है, क्या सिद्धांत है हमारे लिए, क्या प्रैक्टिकल मैसेज है, इसलिए शास्त्र होना चाहिए और शास्त्र में चर्चा भी होनी चाहिए और शास्त्र का सार यहाँ पर समझाने का प्रयास होना चाहिए। मंदिर की ओर से आम जनता के लिए शास्त्र में भगवान क्या कहना चाहते हैं वो सार रूप में, सहज रूप में लोगों को बनाने की, बताने की व्यवस्था होनी चाहिए, तब वो मंदिर मंदिर है, मंदिर में जान है और जागृति है, नहीं तो केवल वो कर्मकांड की तरह है। चलो तो आपको खड़ा किया है, आप खड़े रहो, मत्था टेकेंगे चले जाएंगे, अपना काम करते रहे। तो यहाँ आने से, शास्त्र का विचार सुनने से लोगों के मन में, मति में परिवर्तन आना चाहिए, तब जाकर मंदिर का पर्पज जो है वो सफल होगा। और हर मंदिर में एक आचार्य होना चाहिए, शायद परमानेंट ना रहता हो लेकिन उस मंदिर के संलग्न एक आचार्य होना चाहिए, गुरु, तब जाकर वो आश्रम बनेगा। आश्रम मतलब क्या है? जिसमें भगवान केंद्र स्थान में है, यहाँ पर केंद्र स्थान में रखकर भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, उसको आश्रम कहते हैं। मतलब लोग भी रहते हैं उसके अंदर जो उनकी सेवा करते हैं, जो केंद्र स्थान में रखते हैं, और किसके निर्देश में रखते हैं? श्री गुरुदेव, गुरुदेव भी मंदिर में रहते हैं और कई मंदिर में जाते आते रहते हैं, जब आते हैं तो मंदिर के भक्तों को गाइडेंस देते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी है, कैसे बढ़ानी है, कैसे क्वालिटी को बढ़ानी है भगवान की सेवा, हर बार प्रेरणा देते हैं, तो हर बार भक्त लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपनी सेवा को अधिक समृद्ध और अधिक क्वालिटी में बढ़ाते हैं। जब ये मंदिर ऐसे बनेगा, बनता है, तब जाकर आम जनता जो है, जो बाहर रहती है, उनके लिए एक मन शांति का स्थान बन जाता है, एक आनंद का स्थान बन जाता है, क्योंकि सब लोग बाहर जो है तप्त जीवनम, सब लोगों का जीवन जो है तप रहा है, कलयुग के प्रभाव से त्रिगुणों के प्रभाव से, हाँ, दुनियादारी के जो प्रभाव है सारे, भव बंधन के प्रभाव जो है उससे त्रस्त रहता है जीव। झगड़े हैं, पॉलिटिक्स है, भूम है, हाँ, कर्मकांड है, हर जगह स्वार्थ है, खून खराबा है, द्वेष है, लोभ है लोगों के मन में, उससे कोई कुछ नहीं रहता कभी भी। अटैच रहते हैं उसके अंदर, आसक्त रहते हैं, लेकिन उसमें खुश कभी रहते नहीं। जब मंदिर आते हैं तो इन सभी वस्तुओं से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। मंदिर में उनको लोभ का, द्वेष का, पॉलिटिक्स का, खून खराबे का, मारामारी का, झगड़े का, मतभेद का अनुभव नहीं होना चाहिए। मंदिर में आते हैं तो शांत रहना चाहिए और लगना चाहिए कि यहीं बसे रहे, शांति का अनुभव करते रहे और ठाकुर जी को देखते रहे। लेकिन यहां पर अगर आएंगे वो, यहां पर झगड़े को देखेंगे, यहां पर भी पॉलिटिक्स देखेंगे, यहां पर भी वाद विवाद को देखेंगे, यहां पर भी लोभ को देखेंगे, तो नहीं यार यहां पर वहां फर्क क्या है, वहीं अच्छा होना, यहां पर आके क्या लाभ है। नहीं, उनको यहां पर और वहां पर अंतर अनुभव होना चाहिए, क्योंकि मंदिर वास्तव में बाहर भौतिक दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए एक आश्रय स्थान है। यहां पर आने से उनको मन को शांति मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। शांति तो न्यूट्रल से है ना, जीरो जीरो से है, लेकिन आनंद जो है वो पॉजिटिव कंसेप्ट है, सकारात्मक विचार। तो ऐसा वातावरण मंदिर में होना चाहिए जिससे आने से आते ही आपको शांत लगना चाहिए और उस शांति के ऊपर प्रेम और संतुष्टि और आनंद का अनुभव होना चाहिए। तो मंदिर में आते ही हमको क्या करना चाहिए, मंदिर भक्त रहते हैं, कोई पूजा अर्चा करते रहते हैं, कोई पूजा अर्चा को देखते रहते हैं, सबसे पहले वो जो घंटी है उसको हल्के से बजाकर दस्तक देनी चाहिए, क्योंकि आप भगवान के घर में प्रवेश कर रहे हैं। किसी घर में प्रवेश कर तो बेल बजाएंगे ना, नॉक करेंगे ना कि मैं आ गया हूँ, कि आपकी मेरी परमिशन है मुझे आने के लिए अंदर, ऐसे उनकी परमिशन लेंगे और फिर अंदर प्रवेश करेंगे ना आप लोग। इसी तरह से भगवान के मंदिर पे दरवाजे पे आपका दस्तखत देना चाहिए, फिर अंदर आएंगे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं सबको प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद गुरु महाराज को प्रणाम करना चाहिए, फिर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना उनका दर्शन होगा ही नहीं, आपको पत्थर नजर आएंगे। लेकिन जब गुरु महाराज कृपा लेंगे, उनका दंडवत प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और फिर इनके पास आएंगे, तो ये अपने आप को प्रकट करने की संभावना है। इसलिए वो सिक्वेंस में आना चाहिए और दंडवत प्रणाम करके सबसे पहले उनका गुणगान करना चाहिए। दंडवत करते हुए पहले गुरु का प्रणाम देना चाहिए, उनकी कृपा से ही उनके दर्शन की अभिलाषा करनी चाहिए, उनका गौरव करना चाहिए, जो पाप किए हैं, गलतियां की, उसकी माफी मांगनी चाहिए और उनके प्रति प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए। जो भी हृदय में हमारी बात है उसको अर्पण करना चाहिए, प्रामाणिक हृदय से, कोई स्वार्थ से, कोई लोभ से नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन के स्थान पर आपको इस समय भयंकर दृष्टि का दर्शन हो सकता है, मृत्यु का दर्शन हो सकता है, खून खराबा दिखाई पड़ सकता है, आपके सामने झगड़ा भी हो सकता है। ऐसे होते हुए, संभावना होते हुए भी आपको उस समय भगवान की दिव्य विग्रह का दर्शन हो रहा है, इसलिए आपको उनको थैंक यू कहना चाहिए। इट इज पॉसिबल दैट आई मे विजुअलाइज सम हॉरिबल थिंग राइट नाउ, बट राइट नाउ आई एम सीइंग यू माय लॉर्ड, मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ, ये आपकी कृपा है मुझ पर। जहां पर भयंकर दर्शन होने की संभावना है वहां मुझे आप दर्शन दे रहे हैं और मेरे दर्शन को पवित्र बना रहे हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट भावना जो है धन्यवाद की, हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी अनंत कृपा है। हाँ, उनकी कृपा नहीं होगी तो हम लोग शराब के अड्डे पर बैठे होंगे, जुआ के अड्डे पर बैठ सकते हैं, लड़कियों को देख सकते हैं, हाँ, जुआ खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां बैठे हुए हैं, धोती कुर्ता पहनकर बैठे हुए हैं, ये हमारा श्रेय नहीं है, ये श्रेय उनका है, क्योंकि उन्होंने हमको अपनाया है, उन्होंने हमको आने को परमिशन दिया है, थोड़ा बहुत रुचि भी दिया है और हमको देते भी हैं आने के लिए, परमिशन देते हैं ताकि हम उनको देख सकते हैं। जीवन में अनंत पुण्य किए बिना भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन नहीं हो सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जो बाजू में रहते हैं लेकिन यहां पर मुड़के भी देखते नहीं, ये मत समझना कि वो बड़े लोग हैं, बहुत वो दुर्भाग्य लोग हैं। भगवान बाजू में होते हुए भी जब तक पर्याप्त पुण्य का संचय नहीं होता है तब तक भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। हम भगवान हुए कि नहीं, हमने पुण्य किए नहीं, पता नहीं, लेकिन हमको आने को मिल रहा है, मतलब हमारा भाग्य जोड़दार है और रोज हम आ सकते हैं। हमारे घर के पास भगवान विष्णु का कृष्ण का मंदिर होना ये बहुत ही अनंत पुण्यों का परिणाम है। क्यों परिणाम है? क्योंकि वो व्यक्ति जिसके घर के पास में मंदिर है वो हर रोज दिन में 3 बार भी आ सकता है। वैकुंठ उसके घर से बहुत पास में, जब भी मन लगे उसका, जब भी मन उदास हो जाए तुरंत मंदिर में आ सकता है। तो जिसका घर से मंदिर बहुत दूर है उसको बहुत प्लानिंग करना पड़ता है, तो 2 घंटा लगेगा, फिर पहुंचूंगा, फिर तैयारी करूंगा, नहीं आज जो मूड नहीं इतना थक गया हूं कल जाऊंगा। लेकिन पास में हुआ तो दिन में 3 बार भी, सुबह की मंगला भी कर सकते हैं, काम पे जाने के पहले दंडवत भी कर सकते हैं, शाम को काम से आने के बाद भी प्रणाम कर सकते हैं, और रात को घर में स्नान करके सोने के पहले शयन आदि भी देख सकते, सो सकते हैं, सब मुमकिन है। 5-5 मिनट का काम है पूरा मिलकर, और पूरा जीवन जो है शुरू और एंड से जीवन, दिन का शुरुआत और दिन का एंड जो है वो भगवान से होगा हमारा। कितनी भाग्य की बात है, जब हम नहीं आ पाते हैं तो हमको बड़ा दुख होता है कि आज के दिन में कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं होगा। मेरा ये अनुभव है, जिस दिन मैं मंदिर आता हूँ उस दिन मेरा जप, दिन का कार्य, मन की स्थिति बहुत अच्छी होती है, सब सफल हो जाता है, शांत रहता है मन का, और बाधा भी आते तो भी आराम से हम उसको निकल जाते हैं। और जिस दिन नहीं आ पाते किसी कारण, उस दिन जप ठीक से नहीं होता है, कुछ झगड़े वगड़े होते हैं, कुछ अन कही बातें हो जाती है, कुछ अप्रिय बातें हो जाती है। तो ठाकुर जी का दर्शन करना, तुकाराम महाराज कहते हैं, देवाचीय द्वारी युवा फण भरी, पुण्याची गणना कौन करी। जो व्यक्ति ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी के सामने एक क्षण के लिए भी तन मन से ध्यान से भावना से खड़ा है उसके पुण्य कौन गिन सकता है, ऐसे कहते हैं। इतने अनंत पुण्य एक साथ में जमा हो जाते हैं केवल उनके सामने खड़े होने से। लेकिन कैसे? धीरो जान से, हृदय से, ऐसे नहीं कि देख उनको रहे मन में किसी और विचार कर रहे, ऐसे नहीं, एक क्षण के लिए क्यों ना हो पूरे तन मन भावना हृदय से चेतना से आत्मा से उनके सामने खड़े होना चाहिए और वंदन करना चाहिए। अभी आपको मौका है आज, हाँ, अगर आपका मन यहां वहां के भटक गया होगा जाने के पहले एक बार एक क्षण खड़े हो जाइए उनके सामने, हाथ जोड़कर बिल्कुल तल्लीन हो जाइए उनके अंदर, जो कैसा अनुभव मिलेगा आपको। हाँ, उनका दर्शन करने से हमारे अंदर जो संचित है पुराने वाले और नए वाले और आगे जो करने वाले वो सब नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभता और पवित्रता आ जाती है। इतनी शक्ति है भगवान के अंदर, क्योंकि शुद्ध भक्त ने यज्ञ करके उनको आह्वान किया है और उसमें विराजमान है वो इस मूर्ति के अंदर। मंदिर में कुछ नियम होते हैं कि पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, हाँ, जमाई देना नहीं चाहिए भगवान के सामने, जोर से बात नहीं करनी चाहिए, इसका झगड़ा नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अपने आप को बड़ा सज धज कर मंदिर में नहीं आना चाहिए, भड़क कपड़े पहन के मंदिर में नहीं आना चाहिए। ये सबका बहुत सारा नियम है, आप अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें 64 नियम मिलेंगे आपको भक्ति के, और उसमें कई आगे सर्वदा आपको नियम मिलेंगे कि मंदिर में बैठकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। आप विस्तार में उसको पढ़िए, आपको आनंद आएगा। वो सभी नियमों का सार एक ही है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान विराजमान है, इसलिए आपको अदब से रहना चाहिए। जब राजा आता है ना दरबार में तो क्या बोलते हैं, बा अदब बा बुलाइजा होशियार, अमुक तमुक महाराज पधार रहे हैं, सब लोग जो आराम से बैठे हो सीधे से बैठ जाते हैं, बैठ जाओ खड़े हो जाते हैं, जब अटेंशन में खड़े, क्या मतलब है कि बड़ा व्यक्ति आ रहा है। तभी सामान्य व्यक्तियों को सतर्क रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए, उस व्यक्ति के आने के लिए, उस व्यक्ति के अस्तित्व को समझने के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। तो जहां पर भगवान सबसे महान सबसे परम महान व्यक्ति विराजमान है तो हमको पैर खुला छोड़ के ऐसे आराम से जमाए देते हुए जोर से बोलना ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसको मंदिर अपराध माने गए हैं, और मंदिर अपराध क्यों माने गए हैं, क्योंकि मंदिर अपराध अगर हम टालते हैं तो हम भगवान का दर्शन का पूरा लाभ ले सकते हैं। नहीं तो भगवान आप जैसे हमारे ऐसे कोई एक तो भी है उसको पीठ दिखा के खड़े हो जाएंगे, है ना, कोई इंपॉर्टेंट तो आपको पीठ भी दिखा सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, सामने खड़े रहते हैं आदर के साथ में, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए उनकी महानता को समझते हुए हम उनको अपने आप को प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। और किसी भी ऐश्वर्य के साथ में भगवान के मंदिर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि भड़क कपड़े पहनने नहीं चाहिए, क्योंकि डार्क रंग के कपड़े जो है वो केवल भगवान पहनते हैं ताकि वो आकर्षक लगे। जब हम कोई डार्क रंग के कपड़े पहन के आते हैं तो हम अट्रैक्टिव बन जाते हैं, और मंदिर में हम खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए या दूसरे हमको देखें इसलिए नहीं जाते हैं। मंदिर में केवल एक व्यक्ति को देखने में जाते हैं, वो है भगवान। बस सारा जो श्रृंगार है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, अलंकार है, गहने हैं, सब उनको पहनाने चाहिए। अगर हम सुंदर भी हैं तो अपने आप को कवर करना चाहिए। इसलिए और लेडीज लोग हमारे मंदिर में सर पर पल्लू लेकर आते हैं ताकि कोई उनको ना देखे, भगवान को देखे। किसी का ध्यान भगवान से हटकर अब पर या उन पर न जाए और किसी वस्तु पर न जाए, जिसको देखने के लिए आए उन पर ही ध्यान बना रहे। इसलिए बाकी सारा जो चमचमाहट है उसको यहां पर रखना नहीं चाहिए, केवल वहां पर होना चाहिए। ये हमारी चेतना है, भावना है, ताकि भगवान का स्थान भगवान को हम दें और उस दृष्टि से उनको ग्रहण करें और देखें। हर एक गृहस्थ को भगवान के मंदिर के निर्माण में सहायता करनी चाहिए। अभी सभा में कोई ब्रह्मचारी नहीं है तो उनके जो नियम है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सब गृहस्थ बैठे हुए यहां पर, हम सबको पता होना चाहिए कि मंदिर का उदर निर्वाह जो है, मेंटेनेंस जो है, उसकी जिम्मेदारी गृहस्थों पर होती है। भगवान ने जो चार आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, इसमें केवल एक ही आश्रम अर्निंग करता है, वो है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी अर्निंग नहीं करता है, ना करना चाहिए उसको। वानप्रस्थ सन्यासी को भी अर्निंग नहीं करना चाहिए और ना करते हैं। केवल गृहस्थ लोग अर्निंग करते हैं, धन कमाते हैं। तो गृहस्थों के ऊपर जिम्मेदारी है कि मंदिर का मेंटेनेंस और मंदिर में रहने वाले जो व्रत लोग हैं उनका मेंटेनेंस, ये हमारी जिम्मेदारी है। मंदिर निर्माण करने में, मंदिर मेंटेन करने में और मंदिर में रहने वाले भक्तों को मेंटेन करने में, और भगवान का जो खर्चा है भोग श्रृंगार आदि का, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। जितना भी हमारी क्षमता हो, हमारे इनकम का कुछ हिस्सा प्रेम से, भावना से और समझ बोझ के साथ में मंदिर में देना चाहिए। उस धन का इस्तेमाल भगवान के भक्तों को जो संत हैं उनके मेंटेनेंस में और भगवान के प्रत्यक्ष प्रसार में और भगवान के प्रत्यक्ष विग्रह की सेवा में लगना चाहिए। और किसी ब्रह्मचारी को कभी भी फंड रेजिंग में लगना नहीं चाहिए। अगर किसी मंदिर में किसी ब्रह्मचारी को फंड रेजिंग भेजते हैं तो बहुत वो धर्म विरुद्ध है। वो ऑटोमेटिकली प्रचार करते हुए धन आते हैं तो अलग बात है, लेकिन खास फंड रेजिंग के लिए भेजना और उनको टारगेट देना और उनको कोई टारगेट नहीं करेंगे तो उनको डांटना या पनिशमेंट देना, इस प्रकार की चेतना भावना मेंटेन करना जो है वो मंदिर के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्योंकि ब्रह्मचारियों का काम क्या है? ब्रह्मचारी लोग अपना घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मंदिर में आकर गेहुआ वस्त्र पहनते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं। क्यों रहते हैं? शास्त्र अध्ययन करने के लिए, और शास्त्र अध्ययन करके उसका सार समझ कर दूसरों को समझाने के लिए, ये उनका कर्तव्य है। मंदिरों के अर्च विग्रह की पूजा करने के लिए, शास्त्र अध्ययन जो किया है उसको लोगों को समझाने के लिए सहज रूप में, सुलभ रूप में, और स्वयं क्या कहते हैं उसको, तपस्या के रूप में उनको यहां पर निवास करना चाहिए। ब्रह्मचार्य का यह धर्म है कि परित्याग, उस संसार का परित्याग करते हैं और यहां पर सादगी में रहते हैं, तपस्या करते हुए रहते हैं। सुबह 3 बजे उठते हैं, 4 बजे मंदिर में आ जाते हैं, हम लोग घर में कभी कभी 6 बजे उठ जाते हैं। इसलिए उनका जो धर्म है ब्रह्मचारियों का, वो गुरु की सेवा है। गुरु के नेतृत्व में, गुरु के मार्गदर्शन में यहाँ पर आश्रम जीवन यानी कि तपस्वी जीवन जीना है। उस तपस्वी जीवन को जीते हुए, इंद्रियों को दमन करते हुए शास्त्र का अध्ययन करना है और मंदिर की सेवा करनी है और समय मिलने पर प्रचार करना है, बस यही उनका काम। और गृहस्थ लोगों का कर्तव्य है कि उनका आदर करें, उनके चरणों में बैठें और उनके मुख से सुने शास्त्र का अर्थ विचार, शास्त्र अर्थ समझें, प्रश्न उत्तर करें, आदान प्रदान करें, उनके साथ आदर से पेश आए, ये हमारा कर्तव्य है। तो आप क्या सोचते हैं, अरे एक निकम्मे लोग हैं जो काम धंधा करने में कुछ नहीं, सब जगह फेल हो गए हैं, मंदिर में आके रोटी के लिए रहते हैं, ये सोचना हमारे लिए बहुत पापी विचार है। हमको सोचना ये चाहिए कि अरे देखो, हम लोग पत्नी बच्चे धन दौलत घर प्रॉपर्टी के अंदर फंसे हुए हैं, दिन रात इसमें लगे रहते हैं, भोग लेते रहते हैं, और ये लोग सब संसार का भोग त्याग करते हुए मंदिर में आकर एक अकेला जीवन जी बीत रहे हैं सन्यासी के रूप में, तो जो मैं आपका ब्रह्मचारी करूँ हम नहीं कर पाते, वो कर पा रहे हैं। ठंडे पानी स्नान करते हैं चारों मौसम में, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उनको निकम्मा समझना ये अपराधी भावना है, उनको उनके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। ये मैं नहीं कर सकता वो कर रहे हैं, तो आपको मेरा वंदन है और आपकी जो सेवा हम कर सकते हैं उसके लिए हम तैयार हैं, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और ब्रह्मचारी को कैसे सुनना चाहिए, अरे आ गए पति पत्नी वाले बच्चे वाले भोग वाले लोग आ गए, ये सब भोग में लिप्त रहते हैं, यूजलेस लोग हैं सब लोग, इनसे बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि गृहस्थ होते हुए भक्त हैं भगवान के, पत्नी बच्चे धन दौलत घर प्रॉपर्टी होते हुए भी भगवान का नाम जप रहे हैं, घर में भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं। अगर मेरे पत्नी बच्चे होते तो मैं नहीं कर पाता, मैं तो भोग में लिप्त हो जाता, लेकिन ये सब होते हुए भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, मेरे लिए आदरणीय। जब ब्रह्मचारी लोग गृहस्थ भक्तों का आदर करेंगे, जब गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी भक्तों का आदर करेंगे, तो वो मंदिर का जो प्रगति है वो बहुत तेजी से होगा। ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब दोनों वर्ग हर एक व्यक्ति का आदर करेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये सोच के दृढ़ी भावना से आदर करेंगे, तो दोनों की प्रगति बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर अगर गृहस्थी के जीवन के नियम अगर कोई व्यक्ति पालन करता है तो वे व्यक्ति सन्यासी से कम नहीं है। हर एक आश्रम अपने आप में परिपूर्ण है और हर एक आश्रम भगवत प्राप्ति करने में भी सक्षम है। तो ब्रह्मचारी गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं है और गृहस्थ ब्रह्मचारी श्रेष्ठ नहीं है, ना सन्यासी है, लेकिन फिर भी जो गृहस्थ है वो ब्रह्मचारी बांधकर सन्यासी तीनों को अपना श्रेष्ठ मानता है, और जो ब्रह्मचारी है वो गृहस्थ सन्यासी वानप्रस्थ को श्रेष्ठ मानता है, और जो सन्यासी है वो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ को श्रेष्ठ मानता है। क्योंकि तो सारे आश्रम का जो आधार है वो नम्रता है। एवरी आश्रम इज बेस्ड ऑन ह्यूमिलिटी कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का दास हूं, मैं बड़ा दास हूं, छोटे दास है, ऐसी भावना नहीं होती। हर एक आश्रम में जो परिपूर्ण व्यक्ति, अगर सन्यासी परिपूर्ण है तो इस भावना में रहेगा, दास दास अनुदास। इसलिए हम जब बाहर से आते हैं, अभी कलयुग में कैसा है, सन्यासी लोग ब्रह्मचारी लोग 1% भी नहीं होंगे समाज के, 0.001% भी नहीं होंगे, बाकी सारे ग्रस्त होंगे। तो मेजोरिटी ग्रस्त हो जाएंगे, हम तो मेजोरिटी में हैं, हम लोग ब्रह्मचारी लोगों को कॉन्कर करेंगे, डोमिनेट करेंगे, हाँ मंदिर के कंट्रोल में हमारे हाथ हाथ रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर की सब सेवा हमको करनी चाहिए ग्रस्त के रूप में, लेकिन फिर भी जो विरक्त वर्ग है उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए उनके सामने, तब जाकर मंदिर का प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ेगा। हाँ, मंदिर कोई जब मंदिर की दीवार समाप्त होती है तो मंदिर समाप्त नहीं होता है, मंदिर एक समाज शहर का एक हिस्सा है, तो पूरा शहर ही मंदिर है। अगर तो भगवान भावना भावित है पूरा शहर मंदिर है। कैसे, अभी तो आप जयपुर में देखेंगे तो जब भी मदन मोहन जी और गोपाल गोविंद जी वृंदावन से जयपुर गए तो जयपुर के राजा ने क्या किया, वो तो राजपूत राजा था, वैष्णव था, वो पूरा राज्य उसका वैष्णव था, क्षत्रिय होते हुए वो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे। तो अपने शहर का सबसे मध्यवर्ती स्थान जो है वो उन्होंने भगवान के मंदिर के लिए दिया, और भगवान का मंदिर भी एक शहर जैसा है, उसमें कई दरवाजे हैं, अंदर जाएंगे 10-12 दरवाजे मिलेंगे उसके, आप अंदर आ जाएंगे तो भगवान का गर्भगृह आपको दर्शन के लिए मिले। कितने दरवाजे हैं, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, शहर के मध्यवर्ती स्थान केंद्र स्थान में भगवान का मंदिर बना दिया, राजा भी अपने महल से उस मंदिर में दर्शन करने। मतलब क्या हुआ कि मंदिर में कुछ लोग रह रहे लेकिन सारा जो भक्तगण है वो मंदिर के आसपास रह रहे, पूरे उनका केंद्र स्थान जो गतिविधियों का है वो मंदिर है। काम करने के पहले मंदिर में आएंगे, फिर काम पे जाएंगे, काम करने के बाद भी मंदिर में आएंगे, सोने के पहले भजन करने के लिए मंदिर में आएंगे, फिर दंडवत करके फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठते ही पहले मंदिर में आएंगे मंगल आरती के लिए, फिर भजन करके काम पे जाएंगे, ये मंदिर है। तो अगर हमको हमारा मंदिर का प्रभाव और बाहर और बाहर और दूर तक पहुंचाना है तो यहां पर वो दिव्य चेतना निर्माण करना बहुत आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदिर कैसे बनता है। श्री वृंदावन धाम आप सब जानते हैं हमारे लिए चरम स्थान है, पवित्र स्थान है, पवित्रतम स्थान है। लेकिन वृंदावन भी एक स्थान होते हुए उसके ऊपर जाकर एक चेतना है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो क्या भावना है वृंदावन की, जहां पर प्रेमी भक्त जो है वो बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं, एकत्र रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, वही वृंदावन। जिस जगह पर अनेक प्रेमी भक्त एकत्र आते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को सत्कार्य करते हुए, एक दूसरे को आदर करते हुए, नम्रता के साथ, सेवा भाव के साथ, एक दूसरे की सराहना करते हुए, एक दूसरे को के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए निवास करते हैं और सहकार से मिलजुल कर भगवान की सेवा करते हैं, वही स्थान श्री वृंदावन है। क्योंकि वृंदावन में क्या होता है, गुरुदेव बताते हैं कि वृंदावन एक पारिवारिक जीवन है, इट्स अ फैमिली लाइफ। उस माता है, पिता है, सखियां हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, सखा है, सखियां हैं, और सब मिलकर क्या करते हैं, एकदम प्रेम से रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और सब मिलकर श्री कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं ना। छोटे बालक भी हो, बड़े बालक भी हो, बड़े पुरुष भी हो, ग्वाल बाल हो, सखियां हो, गोपियां हो, माता हो, पिता हो, सब मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे पर बहुत प्रेम करते हैं और सब मिलकर प्रेम के साथ में भगवान की सेवा करते हैं। ये चेतना जहां पर प्रकट होती है वही वृंदावन धाम भी प्रकट होता है। तो ये मंदिर भी वृंदावन है, लेकिन आपके लिए अगर वो वृंदावन के रूप में प्रकट होना है तो हम सबको बड़े प्रेम से रहना पड़ेगा। अपने राग द्वेष, अपना रजोगुण, अपना तमोगुण, अपना द्वेष, अपना लोभ, अपनी काम भावना, ये सब छोड़कर यहाँ पर सत्वगुण में आना है। ये सब गंदे वस्त्र जो है वो चप्पल क्यों उतारते हैं, ये भी प्रतीकात्मक कार्य है। चप्पल गंदी होती है, उसको मंदिर के बाहर उतारते हैं और स्वच्छ अंदर आते हैं। मतलब ये हमारे से उम्मीद है, आशा है कि हम लोग स्वच्छ अंदर आएंगे, इस एक्सपेक्टेशन। वैसे जो गंदे गंदे वस्त्र हैं, द्वेष के हैं, काम भावना के हैं, लोभी भावना के हैं, ये सब भावनाओं को छोड़कर हमको मंदिर में आना चाहिए। और यहाँ पर किसी से भी ईर्षा, कंपटीशन, द्वेष नहीं करना चाहिए। वो करना है तो यहाँ आने की जरूरत क्या है, पर्याप्त दुनिया बाहर अवेलेबल है, एकदम क्या कहते हैं उसको, फेवरेबल भी है उसके लिए, अनुकूल है उसके लिए। वहां पर अपना द्वेष, कॉम्पिटिशन, सब कुछ आप बढ़िया से कर सकते हैं। तो इतनी बढ़िया जगह छोड़कर मंदिर में क्यों आ रहे हैं, मंदिर उसके लिए नहीं है। मंदिर जो है प्रेम बढ़ाने के लिए, सहयोग बढ़ाने के लिए, लोगों को छोड़ने के लिए और भगवान के प्रति शुद्ध भावना जागरूक करने के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि घर के पास मंदिर होना बड़े ही भाग्य की बात है, क्योंकि ऐसी फैसिलिटी जहां पर अपनी विकारों को हम त्याग सकते हैं और अच्छे अच्छे गुणों की परवरिश कर सकते हैं, ऐसा मौका घर के पास में हो तो परम भाग्यशाली है। इसलिए हमने पहले कहा था इस बात। तो ये जो भावना है ये चैतन्य महाप्रभु के एक श्लोक में छिपी हुई है, ना कपि सुनी चेना करो रे व सहिष्णुना अमानिना मान देना तीर्थनीय सदा हरि। क्या चाहते हैं जीवन में अल्टीमेटली, कि नम्रता जो है वो अहंकार के विरुद्ध है, अहंकार को छोड़ना चाहते हैं, गर्व को छोड़ना चाहते हैं और नम्रता को अपनाना चाहते हैं। दुनिया कैसी हमारी है, बिल्कुल असहनशील है, असहिष्णु है, नो टॉलरेंस, कुछ भी सहन नहीं होता है। उसके विरुद्ध हमको मंदिर में आके सीख रहे हैं कि वी हैव टॉलरेट एवरीथिंग, कभी सम्मान मिला तो भी सहन करना है, कभी अपमान हुआ तो भी सहन करना है, कभी पद मिला तो भी सहन करना है, कभी पद नहीं मिला तो भी सहन करना है। क्या मिलना चाहिए हमको, किसके लिए हमको लड़ाई करना चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए बस, सर्विस शुड बी अवेलेबल। श्री राधा गिरिधारी भगवान की सेवा के लिए लड़ाई जो आपको यहाँ पर आना है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की जो भावना है उसको परवरिश करने के लिए यहां पर हमको आना है, तब ये जगह जो है हमारे लिए जब भी आएंगे तो श्री वृंदावन की ही अनुभूति हमको देगी। अगर हम कई बाहर गए बंधु, कई अन्य की जगह में गए और वहां पर प्रेम से रहने लगे और भगवान की सेवा करने लगे तो वो जगह पर भी वृंदावन प्रकट हो जाता है, क्योंकि वृंदावन एक चेतना का परिमाण है, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस विच रिप्रेजेंट्स श्री वृंदावन। तो इसलिए यहां पर एक और बात होती है, यहां पर हमारा जो स्वत्व है जो स्वार्थ है, जो निजी बातें हैं, उसको त्याग करके हमको आना चाहिए। जितना हमारे जीवन में त्याग हो इस तरह की भावनाओं का, उतनी हमारी आध्यात्मिक वृत्ति जो है वो अधिक प्रगति हो जाएगी। इस तरह से ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं भक्ति सदान सरस्वती, उन्होंने कहा है कि भक्तों के संग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है और भक्तों के संग में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है, ऐसे भी कहा। उन्होंने पहले कहा था कि ये बहुत मुश्किल है, उसमें बाद में कहा था कि ये बहुत जरूरी है, मुश्किल होने पर भी जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जब दो से अधिक लोग साथ में आते हैं, बहुत नजदीक आते हैं, बहुत पास में आते हैं, तो उनके दोष हमको दिखने लगते हैं, फिर हम उसको फिंगर दिखाते हैं, देखो ये व्यक्ति ऐसा, देखो इसके अंदर ये दोष है, देखो इसके अंदर वो फॉल्ट है, तब नजर आता है। जब तक शादी नहीं होती है तो हमको अच्छे अच्छे गुण दिखते हैं पति और पत्नी के लिए, जब विवाह को साथ में रहने लगते हैं तो सब दोष नजर आने लगते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत पास में आते हैं, जब पास में आते हैं तो सद्गुण के साथ में दुर्गुण दिखाई पड़ते हैं और सद्गुण हम भूल जाते हैं और दुर्गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दिस इज अवर नेचर टू फर्स्ट सी द फॉल्ट। अभी आप बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताओ, तो पहले हम बुरा बताएंगे, और बहुत सारा बुरा बताने के बाद एक अच्छा बताएंगे, या तो बोलना पड़ेगा प्रभु जी अच्छा भी कुछ है क्या, हाँ प्रभु जी वो समय पर भी आता है कभी, ऐसा बताएंगे। लेकिन शुभ कैसे करेंगे, बुराई करेंगे, ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का स्वभाव क्या है, गौलोक में क्या होता है, गौलोक में केवल गुणगान होता है, दोष रहते भी नहीं है, दोष के बारे में बात भी नहीं करते। तो अगर यहां पर गौलोक वृंदावन श्री वृंदावन धाम का अनुभव करना है तो यहां पर केवल लोगों का गौरव करना होगा, उनके अंदर जो गुण है उनको ढूंढ के निकालना होगा, ढूंढ के निकाल के उसके बारे में बोलना होगा, हो सकते तो बड़ा चढ़ा के बोलना पड़ेगा अच्छे गुण के बारे में, और अगर बुरे गुण दिखाई पड़ते हैं तो उसको दुर्लक्ष करना पड़ेगा। हमारे अंदर वेग हो रहा है, वेग उसको भूलने के लिए, कब मैं इनको बताऊं इनके बारे में, ये बात उस वेग को रोकना पड़ेगा, वही त्याग है हमारा। त्याग धन का भी होता है, त्याग कोई वस्त्र का भी होता है, त्याग कोई प्रॉपर्टी का भी होता है, पैसे का भी होता है, लेकिन ये त्याग जो है हृदय का अंदर का त्याग है, बुरी भावनाओं का त्याग है। इसको हमको जब हम उसको किस त्याग को अपनाएंगे तो हमारी बहुत समृद्धि होगी भक्ति में, क्योंकि एप्रिसिएशन सराहना किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को ये बहुत पॉजिटिव गुण है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उसी तरह से भक्तों के बीच में प्रेम संबंध निर्माण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अपने आप में भक्तों के बीच में प्रेम संबंध उत्पन्न नहीं होते, इसमें रिश्ते में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसकी बर्थडे की याद करके उसको बर्थडे विश करना पड़ेगा, उसके कोई अच्छे समय के दिन को याद करके उसको शुभेच्छा देनी होगी, उसके घर में जाना होगा, उसको हमारे घर में बुलाना होगा, उनके साथ मिलने पर प्रेम की बातें करनी होगी, बुराइयों की बातें नहीं करनी होगी, प्रयत्नपूर्वक हाँ बुरा विषय भी आएगा तो उसको डालना चाहिए और केवल भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए। रूप गोस्वामी बताते हैं ना, क्या बताते हैं, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति घूमते भोजयते चैव षड्भिः प्रीति लक्षणम्। अगर प्रीति को बढ़ाना है किसी के बीच में तो मन के विचार हमारे उनको सुनाना चाहिए, उनके विचार भी सुनना चाहिए, उनको भेंट देनी चाहिए प्रिय वस्तु का, उनसे भेंट वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। ये करते हैं हम लोग बिजनेस के अंदर, हाँ बिजनेस को बढ़ाना क्या करते हैं, डिनर पे बुलाते हैं और डिनर पे खाना खाते हैं, डीलिंग करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो बिजनेस में भी हम करते हैं वही तत्व है। लेकिन हम जब भक्तों से मिलते हैं तो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के संबंधित भेंट देते हैं, लेते हैं, उनकी बात सुनते हैं, हम अपनी बात उनको बताते हैं और उनके साथ बैठकर भोजन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि दोज हु डाइन टुगेदर शाइन टुगेदर, अगर हम साथ में बैठकर भोजन करते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ये तो बहुत पुराना एकदम एंशियंट प्रिंसिपल है, साथ में बैठकर भोजन करना, इससे प्रीति बढ़ती है, प्रीति का वर्धन होता है, वृद्धि हो जाती है। तो ये सब मंदिर में करने के लिए प्रभुपाद जी ने मंदिर का निर्माण किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं हमने मंदिर का निर्माण क्यों किया है, ताकि आम जनता को शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो, इसलिए मंदिर का निर्माण किया गया। तमाम कृष्ण महाराज ने कहा था कि मंदिर वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हृदय की बात करने के लिए अनुकूल व्यवस्था और समय और स्थान प्राप्त होना चाहिए। इट्स अ फैसिलिटी टू बी एबल टू रिवील वंस हार्ट, इट्स अ फैसिलिटी टू बी एबल टू हियर फ्रॉम वंस हार्ट कॉन्फिडेंशियली, दैट इज टेंपल। जब तक हमारा मंदिर ऐसी अवस्था में नहीं आएगा तब तक वो परिपूर्ण नहीं हुआ। अगर हमारा मंदिर चाहे ये चौखट हो या चौखट की बाहर की जगह हो, ये एरिया हो, मंदिर का घेरा हो, अगर वो जगह ऐसी जगह बन गई कि यहां पर आकर लोग अपने हृदय की बात यहाँ के भक्तों से प्राइवेटली बोल सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं, तो मंदिर का उद्देश्य प्रभुपाद की दृष्टि से परिपूर्ण हुआ। नहीं तो वो एक हद तक परिपूर्ण है लेकिन पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं, पूर्ण है लेकिन परिपूर्ण नहीं। इसलिए प्रेम का आदान प्रदान जहां पर भगवान की भावना में होता है वो उसी जगह को मंदिर कहते हैं। केवल कलश बना लिया, चार चौखट जगह ले ली, मंदिर का विग्रह लाया, स्थापना कर दिया, भाड़े का पुजारी लग गया किराए वाला, तो वहां पर ही मंदिर का निर्माण नहीं होता है। इसलिए मंदिर का निर्माण सबसे पहले हमारे हृदय में होना चाहिए। जब हमारे हृदय में मंदिर का निर्माण होगा तब जाकर इस मंदिर को मंदिर के रूप में हम पहचान पाएंगे, इस मंदिर में आकर मंदिर की अनुभूति करेंगे। जो प्रेम की भावना भगवान के लिए हम प्रकट करना चाहते हैं वो जब हृदय में प्रकट होगी पहले, तब जाकर इस जगह में आकर के उसका वृद्धि होगा और अनुभव होगा। तो आइए हम सब मिलकर हमारे मंदिर को ऐसा मंदिर बनाएं कि जिस मंदिर में लोग आते ही उनको उस प्रेम का अनुभव मिले, उनका स्वागत किया जाए, उनको प्रेम से वचन बोले जाए। हमारे घर में आज जब मेहमान आते तो क्या करते हैं, हम पहले हंस के उनका स्वागत करते हैं, आइए आइए बैठिए, जल देते हैं, उनसे कुछ मिठाई खिलाते हैं, क्षेम कुशल पूछते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, तब जाकर उसको आतिथ्य कहते हैं, गेस्ट रिसेप्शन कहते हैं। तो मंदिर में जो बाहर से लोग आते हैं सब अतिथि हमारे, और मंदिर के जो लोग हैं, जो मंदिर के अपने आप को मानते हैं, वो होस्ट हैं, वो यहाँ के निवासी के रूप में हैं। जो नए आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं, जो क्षेम कुशल पूछते हैं उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनको आदरपूर्वक पेश आते हैं। इसलिए जब मंदिर में बाहर के लोग आते हैं, हम जैसे लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, उनको प्रसाद खिलाते समय कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोग भूखे हैं, गरीब हैं, भिखारी, इसलिए खाना खाने यहाँ पर आए हैं। मंदिर में आने वाला आदमी बड़ा भाग्यशाली होता है, वो कितना भी गरीब फटे जब दिखाई पड़ेगा अगर मंदिर में आ सकता है, वो आ गया है तो भाग्यशाली व्यक्ति है। क्योंकि दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, कितने सैकड़ों लोग मंदिर में आते हैं, कितने परसेंट है उसका। अगर वो भिखारी भी है, अपंग भी है, कुरूप भी है, ऐसा भी है, अगर वो मंदिर में आया है तो भगवान की इच्छा से आया है, भगवान का मेहमान है। हम भगवान के सेवक हैं, वो भगवान का मेहमान है, और भगवान के मेहमान की सेवा करना भगवान के सेवक की फर्ज है, कर्तव्य है उसका। हमारे हॉस्पिटल में हम लोग यही नियम पालन करते हैं, हम सब भगवान हॉस्पिटल के सेवक हैं, और जो मरीज है वो भगवान की इच्छा से हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, भगवान का मेहमान है, उसकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। इज अ गेस्ट, वो इज सिक नाउ, उसी पर डिपेंड केयर। उसी तरह से यहाँ पर अगर प्रसाद की लाइन लगती है तो प्रसाद बांटने वाला आदमी जोर से बात करता है, चिल्ला के बात करता है, अनादर करते हुए बात करता है, ये सब गलत है। हमारे हाथ के सामने एक बाल्टी है, उस बात पर अभी हमारा अधिकार है, हमारा कंट्रोल है, तो हम किसको दें, किसको नहीं दें, किसको प्रेम से दें, किसको नहीं प्रेम से दें, ये हमारे हाथ में, ये समझना गलत है। हम केवल सेवक हैं, वी हैव टू बी ओनली सर्वेंट। बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल पोजिशन जो हमारी है वो सेवक भावना होनी चाहिए। एट अवर बेस्ट वी कैन ओनली बिकम सर्वेंट, और दास बनना भगवान का ये सबसे उच्च पदवी है। किसी बड़ी संस्था का मालिक बनना, अधिकारी बनना, सीईओ बनना, डायरेक्टर बनना, ये बड़ी पदवी नहीं है, लेकिन भगवान के दास की पदवी प्राप्त करना ये सर्वोच्च बात है। तो जो भगवान का दास बनता है, भगवान उसके दास बन जाते हैं, तो कॉम्पिटिशन है। तो अगर आपने कह लिया कि मैं भगवान का दास हूं, तो अगर सच्चे में दास आप बने हुए हैं तो भगवान आपके दास बनने का प्रयास करेंगे। कितने भक्तों का भगवान ने सेवा किया है जो वास्तव में भगवान के दास थे, कई अनंत कहानी है। भगवान चाहते हैं ऐसे भक्तों का मैं सेवा करूं, तो हमको यहां रहकर वैसा दास बनना है और सबकी सेवा करना है। कम से कम भावना से, कम से कम स्मित हास्य से, हम कूपन बांट रहे किसी को, ये मत समझना चाहिए कि हमारे हाथ में 50 कूपन है, अपने 50 लोगों को मेरी मर्जी से कूपन देकर खाना खिला सकते हैं। नहीं, हम भगवान की सेवा के रूप में कूपन बांटने के लिए बैठे हैं, और लेने वाला आदमी मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, उसको बड़े आदर से, बड़े प्रेम से बांटना चाहिए, क्योंकि इस कूपन के माध्यम से उस व्यक्ति को प्रसाद प्राप्त होगा, तो भगवान की परम कृपा है। और मेरा ये भाग्य है कि मैं उसको ये देने में नहीं वहां बैठा हूं, और अगर प्रसाद बांट रहा हूं तो मेरा परम भाग्य है, क्योंकि जिस भावना से प्रसाद को बांटते हैं वो भावना उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करती है। अगर मैं कंजूसी से बांट रहा हूं तो मेरी कंजूसी मेरे प्रसाद के साथ उसके हृदय में प्रवेश करेगी। प्रसाद प्रेम से बनना चाहिए, वो तो पहले की बात है, इसके प्रेम से बनने के बाद भगवान को भोग लगने के बाद जो प्रसाद मेरे साथ में बाल्टी में आएगा और मैं अगर प्रेम से बांटूंगा उसको, तो प्रसाद के साथ में मेरा प्रेम भी जो है वो उसके हृदय में प्रवेश करेगा। उदार भावना से देंगे तो उदार भावना भी उसके हृदय में प्रवेश करेगी। जो जो भावना से देंगे, द्वेष से, हिंसा से, गुस्से से, तो सारी भावनाएं वैसे के वैसे खाने वाले के हृदय में प्रवेश करेंगी। वो सब भारतीय दुनिया में होता है, मंदिर भी होना चाहिए। मंदिर में तो केवल प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, और जहां पर जिस मंदिर में आने वाले लोगों को बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं, प्रेम का अनुभव देते हैं, प्रेम से भगवान के विषय परिचय कराते हैं, उस मंदिर का उद्धार और क्या कहते हैं इसको, प्रगति बहुत तेजी से होती है। क्योंकि तो भगवान जो है हमारी भावना को रिस्पॉन्स देते हैं। केवल धन इकट्ठा करने से और बढ़िया बढ़िया ब्रिक लगाने से, संगमरमर लगाने से, पूरा डेकोरेशन लगाने से, इटालियन मार्बल लगाने से मंदिर भव्य नहीं बनता है। मंदिर भव्य बनता है भावनाओं से। जो भक्त उसमें रह रहे हैं वो कैसी भावना से रह रहे हैं, कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, कैसे सहयोग कर रहे हैं, कितने नम्र हैं, कितने त्यागी भावना के हैं, कितने सहनशील हैं, और कितना प्रेम से भगवान के विषय में समर्पण करना चाहते हैं, और आने वालों को उसी समर्पित भावना से भगवान का ज्ञान, भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद प्रेम से दे रहे हैं। उस प्रेम के प्रतिसाद में भगवान रिस्पॉन्स देते हैं, फिर उस मंदिर में समृद्धि भी आएगी, ऐश्वर्य भी आएगा, कभी धन 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 की कमी नहीं होगी, प्रसाद में कमी नहीं होगी, प्रसाद के स्वाद में कमी नहीं होगी, क्योंकि तो ऐसे मंदिर में भगवान बड़े प्रेम से उस भोग को स्वीकार करेंगे, क्योंकि तो प्रेम से दे रहे हैं। वो प्रेम से दिया हुआ भोग, प्रेम से खाया हुआ भगवान का प्रसाद जब प्रेम से लोगों को दिया जाएगा तो सबके मन में प्रेम का दीपक जलेगा, फिर सहयोग बढ़ेगा, फिर प्रेम बढ़ेगा। अगर ये भावना नहीं है तो मंदिर के हर एक सेवा एक बोझ बन जाती है, पुजारी को दीपक घुमाना एक बोझ बन जाता है, अभी 20 मिनट लोगों यहाँ खड़ा रहना है, अभी एक एक आइटम को उठाना है, 7 बार 5 बार गिनती करके घुमाना है, कितना बोरिंग काम है। माइनस भावना हर चीज यहाँ की बोझ बन जाती है, और प्रेम की भावना रहेगी तो हर चीज आनंद में बदल जाती है। पुजारी कहेगा अरे 20 मिनट आरती खत्म हो गई, मेरी इच्छा है कि मैं आरती ही करता रहूं जीवन भर, आरती खत्म ही ना हो, अरे कीर्तन खत्म हो गया, मेरी इच्छा की कीर्तन चलता ही रहे और मैं कीर्तन में नाचता ही रहूं, अरे प्रसाद का समय खत्म हो गया, मेरी इच्छा तो यह है कि मैं यहां खड़ा रहकर अनंत काल तक प्रसाद को बांटता रहूं, भगवान की कृपा लोगों तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि प्रेम का होना और न होना कितनी बड़ी बात है, इसलिए हमको, हम जैसे बाहर रहने वाले लोगों को यहां आने से और यहां के रहने वालों को यहां रहने से प्रेम की भावना भी कभी कभी आनी नहीं चाहिए, तब जाकर हमारा ये मंदिर और नया मंदिर सफल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इससे 10 गुना बड़ी बिल्डिंग बने, लेकिन उतना 10 गुना बड़ा हमारा हार्ट हृदय भी बढ़े, हमारी भावना भी 1000 गुना बढ़े, हमारी प्रेम की भावना भी उतनी ही वृद्धि हो जाए उसके अंदर, ताकि हम अधिक से अधिक 1000-00000 लोगों का स्वागत कर सके, उसमें सक्षम बन सके, उतने भक्त तैयार हो जाए और लोगों को हम लोग यहाँ पर बुलाएं, उनका स्वागत करें, उनको प्रसाद बांटे, उनको भगवान के विषय में सुनाएं, भगवान के विग्रहों को अधिक अधिक सुंदर श्रृंगार करके उनका दर्शन कराएं, उनके प्रति लोगों के हृदय में आकर्षण उत्पन्न करें। ऐसी भावना से अगर हम इस मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हम सबके लिए मंदिर जो है परम कल्याणकारी होगा। इसके आगे ठाकुर भक्त सुधा जी का मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। ठाकुर भक्त सुधा जी ने भारतवर्ष में 64 मंदिर बनाए, गौड़िया मठ स्थापित किए, इस उद्देश्य स्थापित किए थे कि इस मंदिर से सब लोगों को कृष्ण प्रेम प्राप्त होना चाहिए, इस मंदिर के माध्यम से ये मंदिर इतना प्रभावी होना चाहिए, इस मंदिर में स्पर्श किए हुए, संपर्क किए हुए हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होनी चाहिए। इस भावना से उन्होंने 64 मंदिर भारतवर्ष में खोले गौड़िया मठ के रूप में। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ दुर्भाग्यवश कि जब बड़े बड़े मंदिर बनने लगे, संगमरमर के पत्थर लगने लगे उसके अंदर, और कमरे बनने लगे रहने के लिए निवासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए। तो ब्रह्मचारी और सन्यासियों के बीच में कमरों के लिए झगड़े होने लगे कि भाई ये कमरा लूंगा, ये समुद्र किनारे में है, ये पूर्व दिशा में है, यहाँ सूरज का किरण आता है, आप वो कमरा लो, आप जुगेर हो, आप छोटा कमरा लो, मैं बड़ा कमरा लूंगा, मेरे कमरे में गद्दे होने चाहिए, तुम्हारे कमरे में चढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे तरह जो बेकार की चर्चा और बात विवाद होने लगे। तब जाकर प्रभुपाद जी गुरु ने कहा कि अब अभी समय ऐसा आ गया है कि बने हुए मंदिर से संगमरमर के पत्थर उठा देने चाहिए और वो पत्थर को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे किताब छपवाने चाहिए और मंदिरों को छोड़कर आम जनता में जाकर उन किताबों को बांटना चाहिए ताकि लोगों के हृदय में परिवर्तन हो। क्योंकि संगमरमर के पत्थर लगाने के मंदिर लगाने वाले मंदिर में अभी लोगों के मन के परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, मन और लोभ से दूषित होते जा रहे हैं। मंदिर का उद्देश्य तो ये नहीं था लेकिन लोगों ने अपनी भावना से उसको गलत बना दिया। तो मंदिर को अच्छा बनाना या बिगाड़ना ये हमारे हाथ में है। हाँ, मंदिर लाल रंग के पत्थर से या व्हाइट रंग के पत्थर से नहीं बनता है, मंदिर लोगों के भक्ति भावना से बनता है। इसलिए हमारे भारत में आज भी ये प्रथा है कि जब मंदिर का निर्माण का संकल्प होता है तो सब लोग अपने घर में किताबों में नोटबुक के अंदर कॉपी के अंदर भगवान का नाम लिखते हैं, राम नाम कृष्ण नाम लिखते हैं और किताबें किताबें भर देते हैं उससे, और वो भरी हुई किताबें जो है नाम लिखी हुई मंदिर में भेजते हैं और जो मंदिर का जो पाया है मतलब जो बेस है ना फाउंडेशन जो है ना उसमें वो नोटबुक को रखते हैं। क्या भावना है इसके पीछे कि मंदिर की नींव जो है, तो मंदिर का बेसिस जो है, जो पाया है, जो फाउंडेशन है वो हमारी भक्ति भावना है। तब जाकर मंदिर से उस मंदिर से भगवान भावना का प्रकाश होगा, विकास होगा और प्रचार भी होगा। नहीं तो बड़ा मंदिर बना रहेगा, अंदर सब लोग झगड़ते रहेंगे कमरों के लिए और अधिकार के लिए और पोजीशन के लिए और कमांडर बनने के लिए और टेम्पल प्रेसिडेंट बनने के लिए और अपने अधिकार को जताने में बिजी रहेंगे, तो भगवान वहां पर निवास नहीं करेंगे, केवल उनकी पत्थर की मूर्ति रहेगी वहां पर, वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि वो अपना धाम छोड़कर यहाँ पर क्यों आए, यहाँ पर झगड़े हैं, द्वंद्व है, वाद विवाद है, प्रतिस्पर्धा है, अहंकार है, गर्व है, क्यों आ रहे वो? उनका धाम तो सबसे मुक्त है, प्रेम से भरा हुआ है। हाँ, अगर हमने यहाँ पर प्रेम का वातावरण निर्माण किया तो फिर वो आएंगे। क्यों आएंगे? हाँ, ये मेरे धाम जैसा है, ये मेरे घर जैसा है, जो प्रेम मेरे घर में मुझे प्राप्त होता है भगवान कहेंगे वो यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है, यहाँ पर भी अनुभूति हो रही है, चलो मैं यहाँ पर भी रहता हूँ। और ये सब हमारे हाथ में है, हम सब लोगों के हाथ में, सब लोग जो मंदिर में आते हैं उन सब लोगों के हाथ में। पहला हमारा उदाहरण बनाए, फिर लोगों को परिवर्तन करने का प्रयास करें। हमारे मैनेजमेंट साइंस में हम क्या सीखते हैं कि दुनिया में हम कोई वस्तु बदल नहीं सकते, किसी व्यक्ति को बदल नहीं सकते हैं, अगर बदल सकते हैं तो अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हम अपने आप को बदलेंगे तो तुरंत सारे लोग बदलते हुए नजर आएंगे। इसलिए ऐसे कहा गया कि अगर रिश्ते बनाने हैं तो उस रिश्तों को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे अगर हमारे मन में प्रामाणिक इच्छा होगी तो हृदय से भगवान आपको बताएंगे कि इस रिश्ते को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। हमेशा किसी भी रिश्ते को बढ़ाने के लिए जो सॉल्यूशन है या जो नुस्खा है, जो फॉर्मूला है, वो अपने आप को अपने मन में आपको मिलेगा अगर आप सिंसियर हैं। अगर आपको वास्तविक रूप में किसी भक्त से प्रेम करना है, संबंध बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए, अगर ये ऐसा प्रश्न आपके मन में उतर आता है, उसी समय अपने ही मन में हृदय से परमात्मा की आवाज आएगी और आपको उत्तर मिलेगा कि आपको ये करना चाहिए, अभी इस वक्त ये करो, उससे मिलो, ये बात करो, उसको एक कोई वस्तु भेज दो, उसको अपने घर पे बुला लो, जो उसको चाहिए, जो प्रिय है वैसा करो, जो उसको चाहिए वो दे दो, प्रेम से उसको मंदिर में प्रसाद हॉल में लेके जाओ, प्रेम से प्रसाद खिलाओ, उसके घर का, उसके रिश्तों का, उसके परिवार का पूछताछ करो। कई मार्ग हैं, रूप गोस्वामी ने 6 मार्ग बता दिए हैं, उसके भी ऊपर अनंत मार्ग हैं, पर अगर सिंसियरिटी है, प्रामाणिकता है, तो उन रिश्तों को बढ़ाने के लिए भगवान आपको प्रेरणा देंगे और ऐसा एक दिव्य समाज उत्पन्न होगा हजारों भक्तों का, जो सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सब मिलकर भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे समाज में रहना भगवान पसंद करेंगे और आपके बीच में रहेंगे, हमारे बीच में रहेंगे, हमारे को हमको हमारे संग को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा एक दिव्य मंदिर का निर्माण हम करना चाहते हैं। कितना सीमेंट लगाया, कितना स्टील लगाया, कितना मार्बल लगाया, इसके गिनती पर नहीं, कितना ईंट लगा, कितना डोनेशन इकट्ठा हुआ, कितने करोड़ों इकट्ठा हुए, उस पर हमको मंदिर नहीं बनाना, वो तो अपने आप जब प्रेम की भावना जगेगी तो ये करोड़ों रुपए, ये सीमेंट और ये टाइल्स और ये पत्थर, ये अपने आप आ जाएगा, क्योंकि भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं है, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं है, कमी केवल भावना की। प्रभुपाद गुरु महाराज भी यही कहते थे, दुनिया में कोई कमी नहीं है, कमी है केवल कृष्ण भावना की। वो कृष्ण भावना हमको जागरूक करना है, वो केवल हमारे हाथ में है। उसके लिए धनी होने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, हाँ बड़ा बिजनेसमैन होने की जरूरत नहीं है या प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है, वो तो भावना की बात है, वो तो फ्रीली अवेलेबल है। गरीब से गरीब आदमी भी वो भावना जगा सकता है और अमीर से अमीर आदमी भी वो भावना जगा सकता है, प्रेम की भावना सब जगा सकते हैं। और वो प्रेम की भावना जगाने के लिए हम लोग सब लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप क्यों करते हैं? ये नहीं कि हमारा डिसीज ठीक हो जाए और घर नहीं तो भाड़े का घर से अपने घर में चले जाएं, और अगर साइकिल है तो गाड़ी आ जाए, इसलिए हम जप नहीं करते भगवान के नाम। हम जप करते हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये मंत्र हम जपते हैं। और जब ये मंत्र हम उस भावना से जपते हैं और जब कृष्ण प्रेम की जागृति होती है, एक दूसरे से प्रेम का निर्माण होता है, तो भगवान वहां निवास करने लगते हैं और उस भगवान के अस्तित्व का जो अनुभूति है आप सबको होने लगता है। ये बड़ा दिव्य फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हाथ बटाने के लिए हम लोग यहां पर आते हैं। मैं एक सागर के कण की तरह हूं, कोई बड़ा मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब मेरा कण मैं ये सागर से जोड़ दूंगा, सागर में एक कण की कोई ना हो वृद्धि हो जाएगी। आई वॉन्ट टू गिव माई कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मेरी क्षमता में कितना प्रेम देना है, कितनी सेवा देनी है, कितना समय देना है, कितनी भावना देनी है, जितनी भी मेरी क्षमता है मुझे देना चाहिए। और हर व्यक्ति अगर इस भावना देते रहेगा तो यहां पर प्रेम का सागर बनेगा और उस सागर के स्पर्श में जो भी आएगा वो भी उस प्रेम के रोग से पागल हो जाएगा। जब प्रेम के संपर्क में व्यक्ति आएगा तो प्रेम का इन्फेक्शन होगा और सब लोग प्रेम प्राप्त करेंगे। जब द्वेष के सागर के पास आएगा तो प्रेमी व्यक्ति भी द्वेषी बनेगा, वातावरण का परिणाम। तो इस मंदिर में ऐसा दिव्य वातावरण निर्माण करना हमारे हाथ में। एक अच्छे उदाहरण की जरूरत है इसके लिए। शास्त्र में सब कुछ दिया है, जो हम बता रहे हैं वो भी दिया है, जो नहीं बताए वो भी दिया है। जब प्रभुपाद जी नहीं गए थे अमेरिका में तभी भी ये शास्त्र पूरी दुनिया में उपलब्ध थे, तो क्यों नहीं प्रचार हुआ, क्यों नहीं हजारों करोड़ लोग भक्त बने तो प्रभुपाद के जाने के बाद बने? क्योंकि प्रभुपाद जी उस शास्त्र के एक मूर्तिमंत उदाहरण थे। ही वॉज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ द शास्त्रर्स। उनके हर व्यवहार में, हर बात में, हर गतिविधि में, हर कार्य में वो कृष्ण भावना ओत प्रोत भरी हुई थी। तब लोगों को अनुभव हुआ जो शास्त्र में दिया है वो जीवन में उतार सकते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में हम देख रहे हैं कि उनकी हर कृति में, हर विचार में, हर गतिविधि में ये शास्त्र का सार छुपा हुआ है। हर उनका व्यवहार प्रेम पूर्ण है, उनके हृदय में सागर जैसा प्रेम है जो सब जीवों के लिए वो बांट रहे हैं। उस प्रेम को देखते हुए, उनकी बात ना समझते हुए भी लोग उनकी ओर आकर्षित हुए। वो कैसे बोलते थे इंग्लिश, उनको समझ में आता नहीं था, बंगाली एक्सेंट में इंग्लिश बोलते थे, हाँ तो छह छह महीने तो लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी ओर आकर्षित हुए क्योंकि वो प्रवचन के आगे पीछे जो व्यवहार करते थे वो व्यवहार दिव्य प्रेम से ओत प्रोत भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने भक्त लोग लिखते हैं कि 6-8 साल के बाद में वो क्या बोलना चाहते हैं वो जरा जरा सा हमको समझ में आने लगा, तो उसके बाद में हमने समझे कि क्या करना है और वो क्या मैसेज लेकर हमारे लिए आए थे। लेकिन सबसे पहले क्या किया उन्होंने, दयापूर्ण व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। और वो प्रेमपूर्ण व्यवहार एक उदाहरण से आता है। प्रभुपाद जी ऐसे दिव्य उदाहरण थे और हमारे जीवन में भी ऐसे कोई उदाहरण है, इसलिए हम लोग यहां बैठे हुए। हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई ऐसा आदर्श मिलता है जिसको देखते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके देखते हुए मंदिर में आते हैं और भगवान की सेवा में कुछ प्रयास करने का यत्न करते हैं। तो एक उदाहरण की जरूरत है और सोचना चाहिए कि वो अच्छा उदाहरण मैं क्यों ना बनूं, क्यों हमारे से अलग और कोई होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी मेहमान के घर में होना चाहिए, महात्मा गांधी पड़ोसी के घर में होना चाहिए, भरत भगत सिंह जो है वो सामने वाले घर में होना चाहिए, हम उसका वंदन करेंगे। लेकिन हमारे घर में हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे, तो मुझे तो बनना ही नहीं, क्योंकि इसमें त्याग है ना, त्याग होगा तो प्रेम बढ़ेगा, भगवान के लिए त्याग होगा तो हमारे जीवन में सब कुछ सफल हो जाएगा। इसलिए अगर एक उदाहरण की जरूरत है तो सबसे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए कि मैं वो उदाहरण बनूं, उस पर गर्व ना करूं लेकिन मैं उस उदाहरण को बनने का प्रयास करूं। जहां तक मेरी शक्ति है, जहां तक मेरे पर कृपा है गुरु जी की, मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा उदाहरण बनूं। अच्छा उदाहरण बनना मतलब लोगों को प्रेम देना, भगवान से लेना, उत्पन्न करना और लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि तो भगवान का मिशन है। और जब ऐसा उदाहरण उत्पन्न होगा तो हमारा मंदिर जो है वो तो सफल होगा। इसलिए सारांश में आपको मैं बताना चाहूंगा कि नए मंदिर का निर्माण हम देख रहे हैं, जब मंदिर में आते तो देखते रहते हैं आगे बढ़ रहा है कंस्ट्रक्शन, सबको उसका दर्शन करते हुए ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम इस मंदिर को सजीव बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं, इस मंदिर के अंदर इतनी तीव्र भगवान की भावना भरी होनी चाहिए, इसके संपर्क में आते ही लोगों के मन में प्रेम का दीपक जलना चाहिए। ये चार दीवारी खंभे मंजिलें जो बनने जा रही हैं, भगवान का विग्रह उसमें स्थापित किया जाएगा, पूजा अर्चा होने लगेगी, उस सारी कार्यों से हमारे वहां जाने से, हमारे वहां कीर्तन करने से, हमारे वहां भगवान की सेवा में कार्य करने से वहां पर दिव्य स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ऊर्जा भर लेनी चाहिए, भर जानी चाहिए। सब हमारे हाथ में, अगर हमारे व्यवहार से, हमारी भक्ति भावना से, सेवा से वो अगर ऊर्जा हम लोग वहां उत्पन्न कर पाए तो हमारा जीवन में धन्य हो जाएगा, और जो लोग संपर्क में आएंगे वो भगवान की भक्ति में प्रवेश करेंगे। और अंतिम स्थान हमारा क्या है, हम सब लोग भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हुए भगवान को अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। तो पहले खुद का जो उद्धार है वो यहाँ आने से हम करेंगे, तो उससे जो बाहर के लोग आएंगे उनका भी उद्धार हो जाएगा। श्री राधा गिरधारी मंदिर की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, कृष्ण भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
इसमें रिकॉर्डिंग हुआ।